तबूक के मौके पे एक सहाबी ने जब ये कॉल सुनी कि इस्लाम को माल की ज़रूरत है और अल्लाह के नबी ने कभी इस तरह से हमसे खुल के नहीं कहा कि दीन को ज़रूरत है जिस तरह अब कहा गया है, तो अब क्या करूं, है ही कुछ नहीं। सारा दिन एक यहूदी का कुआं सेंते रहे, पानी निकालने पे हर डोल पे खजूर मिली, शाम तक एक मुट्ठी भर खजूरें जमा करके आ गए और शर्माते हुए अल्लाह के नबी को दी कि अल्लाह के नबी यही लाया हूँ। बल्कि मुनाफिकों ने हंसी उड़ाई कि देखो मुट्ठी भर खजूरों से रोम को फतह करने जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने वो बड़ा जो ढेर जमा हो चुका था ना चीज़ों का, उसके ऊपर खजूरें फैलाईं और कहा कि मुट्ठी भर खजूरें इस पूरे ढेर के ऊपर गालिब आ गईं। बस लोग कहते हैं हाय बहुत होना तो फिर देंगे, अल्लाह दे फिर देखें हम क्या देते हैं, नहीं जो है उसमें से दे लीजिए। बस अगर आपको मैं कहूँ एक बात, बिल फर्ज, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ के हिसाब से क्या रकम बड़ी होती है, मिलियन की बात कर लूँ, अगर बिल फर्ज आपको जाती तौर पे किसी शौहर भाई बाप की बात नहीं सरासर, आप बिल फर्ज अगर आपको 1 मिलियन क्रोन मिल जाए, हलाल जायज कहीं से भी मिले, आप उसको छोड़ दें, आप उससे क्या करेंगी? चंद लोग हाथ खड़ा करें और बताएं कि 1 मिलियन में से आप उसको कैसे खर्च करेंगी। जी आप बताइए, और सच कहिए नहीं करेंगी कुछ भी जो भी है वट एवर। पाकिस्तान में तो पहली बड़ी मस्जिद है, बहुत फर्क है दोनों में। जी ये कह रही हैं कि ये सारे पैसों की या कुछ रखेंगी पास, आधे पैसों की ये पाकिस्तान में एक मस्जिद बनाएंगी जहां तालीम का काम भी होगा, बात पूरी किया करें। ठीक है अमना आप क्या करेंगी, बहन का लोन उतरवाएंगी सारे से, कितने परसेंट अल्लाह के रास्ते में देंगे ये बता दें, कहीं भी दे दें जी, सब आप अपने लफ्जों में बता दें कितने परसेंट अल्लाह के रास्ते में देंगे, सब बोल दें एक साथ ही। आप कह रहे हैं सारे का सारा 100%, आप 100%, 100%, फायजा सारे ही दे देंगी। देखिए अब आप सबने जो कहा है ना वो अल्लाह ने भी सुन लिया, इन दरों दीवार ने भी सुन लिया, अब जरा समझिए इस बात को, कहाँ देंगे वो छोड़ दें। आप में से अक्सर ने कहा कि सारे का सारा दे देंगी, अब क्या हुआ, वो तो 1 मिलियन आएगा तो देंगे ना। अब जरा आप समझ लें कि इस वक्त आपके पास कितना है, हर एक अपना सोचे, क्या उसमें से सारा आप अल्लाह के रास्ते में देते? अगर आज आप 10,000 करोन में से सारे अल्लाह को नहीं दे रहे तो मान लीजिए कल 1 मिलियन करोन आएंगे तो भी नहीं देंगे। जो ये सोचता है ना कि कल मैं इतने दूंगा वो आज दे, क्योंकि माल जितना ज्यादा होता है उतना थोड़ा हो जाता है। आप आने तो दें वो वक्त, आपकी तो इतनी 1 मिलियन नहीं, आपकी तो 2 मिलियन की जरूरतें सामने आ जाएंगी। इसलिए बंदे के पास जो होता है ना उसमें से देना शुरू कर दे। तल और वाबिल का तकाबुल है ये, वाबिल क्या 1 मिलियन और तल्लुन क्या है आपके 10,000, जो है ना उसका परसेंटेज दे लें। अल्लाह बिल्कुल नहीं पूछता कि तुमने इतने लाखों क्यों नहीं दिया। आपने कभी सुना कि अबू बकर सिद्दीक ने क्या दिया था? हमेशा ये सुनते हैं पूरे घर का सामान, और आपको पता है वो एक गठड़ी से भी ज्यादा नहीं होगा, हमारे तो क्लॉजेट का सामान अबू बकर के पूरे घर के सामान से ज्यादा होगा। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा क्या दिया, रखा क्या, यानी जो था वही दिया। तो अच्छी नीयत इखलास जो होता है वो इतना प्यारा काम है कि जिसकी वजह से दिया हुआ कबूल हो जाता है और देने को अल्लाह ताला फिर उसको ही बढ़ा देता है। कभी अच्छे दिनों में ज्यादा देते थे तो खराब दिन आ गए, माल कम हो गया, तो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा दिया हुआ भी उसका कबूल होगा। तो अल्लाह ताला यहाँ सिखा रहे हैं कि ज्यादा या कम बात नहीं है, बात यह कि देते किस नीयत से हो। वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। अब यहाँ तक आप दो लोगों का तकाबुल समझ चुके हैं ना, अब आखिरी आयत जो है ना इस रुकू की वो बड़ी दिलसोज है, इसको पहले एक दफ़ा खुलासे में करके फिर इसको इंशाल्लाह थोड़ा सा अमली नुक्ते से देखेंगे। अल्लाह ताला एक सवाल करते हैं, आया वद्दू, क्या चाहता है, वुद का लफ्ज़ मोहब्बत के लिए आता है, यानी क्या चाहता है अहदुकुम, तुम में से कोई एक, यानी हम सब में से कोई एक, क्या अन तकूना लहू जन्नतुम, के हो उसका एक बाग, मिन नखीलिम व अनाबिन, जिसमें खजूरें भी हों। नखील खजूर के दरख्त को कहते हैं, खजूर को तमरा कहते हैं, खजूरों के दरख्त हों, व अनाबिन और अंगूर, इनब की जमा है, अंगूर ग्रेप्स को कहते हैं, और तजरी मिन तहतिहा अलअनहार, और उसके नीचे नहरें बहती हों। सिर्फ खजूरें और अंगूर हैं नहीं, लहू फीहा मिन कुल्लि समरात, और उसमें हर तरह के फल भी हों। मतलब ये कि खजूर और अंगूर के अलावा भी उसमें और भी तरह के फल हैं, हर खूबी जो किसी बाग में हो सकती है वो सब हो। अच्छा, यहाँ पे रुक के सोचिए कि अल्लाह ताला ने पूछा है कि क्या तुम चाहते हो कैसा हो। हर एक जवाब इसका अपने आप से सोच सकता है कि हर एक ही चाहेगा कि मेरा हो, ये बाग हो गया आपके पास। फिर वह असाबहुल किबर, और उस शख्स को बुढ़ापा पहुंच जाए। हु इधर कौन है? अहद, जिसका तذکرہ ऊपर आया था, जिसका ये बाग था उसको बुढ़ापा पहुंच जाए। वह लहू जुर्रियतुन दुआफा, और उनकी औलाद छोटी है, यानी खुद बूढ़े हो गए और औलाद अभी इतनी छोटी है कि उस बाग की टेक केयर नहीं कर सकती या उसको किसी भी मुश्किल से बचा नहीं सकती। इतने में क्या हुआ? फअसाबहा एसारुन, बस पहुंचा उसको आग का बगोला। एसार का लफ्ज़ आइन स्वाद रा से है, ये वही लफ्ज़ है जो असर है, असर कहते हैं निचोड़ने को, एक्सट्रैक्ट, बगोले का मानी है इसमें। उर्दू में हम कहते हैं ना बगोला। सख्त आंधी जो ज़मीन से आसमान की तरफ अमूदी तौर पर उठे। आपने देखा होगा वो जो गोल गोल उठता है गर्दाब, मट्टी उठती है और वो ऊपर की तरफ जाती है, इशारा है इसमें आग के बगोले की तरफ। फी ही नारुन, जिसमें आग हो। बहुत गर्मियों में शायद ऐसी हवाएं चलती हैं ना, लू चलना जिसको कहते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि एकदम ऐसी आंधी चली, ऐसा बगोला उठा कि जिसके अंदर आग थी। नतीजा क्या हुआ? फहतरकत, बस उसने जला दिया उसको। हा रौकाफ से, किसको जलाया? बाग को, उस बगोले ने बाग को जला दिया, बस बात ख़त्म। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें। क्यों? लअल्लकुम तत्तफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो, सोचो, तफक्कुर करो। क्या बात है, एक शख्स, उसका बाग है बहुत खूबसूरत, हर तरह के फल भी हैं उसमें और पानी भी है। फिर वो बूढ़ा हो गया, उसके बच्चे अभी छोटे हैं। बूढ़ा होने से मुराद क्या है कि वो शख्स खुद मेहनत नहीं कर सकता, और बच्चों के छोटे होने से क्या मुराद है कि अभी बच्चे मदद नहीं कर सकते। कि इतने में एक ऐसी वबा आई कि पूरे का पूरा बाग जो था वो जल गया, और अल्लाह ने हमारे लिए आयतें बयान कर दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक मौके पे सहाबा कराम से कहा कि ये जो आयत है ना, अयावद्दु अहदुकुम, बताओ ये किस बारे में नाजिल हुई? सहाबा ने कहा कि अल्लाह ही जानता है बेहतर, हमें तो नहीं पता। तो कहने लगे, ये क्या बात है, अल्लाह ही जानता है, तुम बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु उस महफिल में बैठे थे, और ये छोटी उम्र के थे, कहने लगे कि मुझे इस बारे में कुछ पता है। तो हज़रत उमर खुश हुए, कहने लगे कि भतीजे तुम कहो, और अपने छोटे होने को हकीर ना समझो, क्योंकि बाद दफ़ा छोटे लोगों को वो बात समझ आ जाती है जो बड़ों को नहीं आती। उस पे हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा कि इस आयत में अमल की तमसील है, यानी ये बाग असल में अमलों का बाग है। ये बात सुन के हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ, इस मिसाल में अल्लाह ताला ने उस शख्स की तमसील दी है जो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी के काम करता था, यानी सारी ज़िंदगी अच्छे काम करता रहा, फिर शैतान उस पर मुसल्लत हो गया और वो गुनाह के काम करने लगा, और उसने अपने किए हुए आमाल को ज़ाया कर दिया। तो ये है वो शख्स जिसकी सारी ज़िंदगी की नेकियां आखिरी उम्र में ज़ाया हो गईं, ख़राब हो गईं उसकी नेकियां, क्योंकि उसने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। कुछ लोग बहुत नेकियां कर रहे होते हैं, लेकिन उन नेकियों के बाद कोई एक ऐसा काम कर लेते हैं जो सारी नेकियों को ज़ाया कर देता है, और वो सारी की सारी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए इंसान कभी अपने आप को मुतमईन ना समझे। और पिछली आयतों के टेक्स्ट में अगर इसको हम देखें, 23 से मुराद कौन शख्स है कि जो अल्लाह के रास्ते में माल दे देता है, खर्च कर देता है, लेकिन उसके बाद फिर वो कोई ऐसा काम कर देता है कि उसका दिया हुआ ज़ाया हो जाता है और कुछ भी उसमें से बाकी नहीं मिलता। कुछ लोग बुढ़ापे की तरफ जब बढ़ते हैं ना, तो उनके दिलों में नेकी की तमन्ना बढ़ती है और अच्छे काम करने लगते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही बदबخت हो जाते हैं, चूंकि कमजोर हो जाते हैं ना, तो वो और ज्यादा शैतान के हाथों में तरने वाला बनते हैं। किसी इंसान को कभी भी अपने आप को शैतान के चुंगल से आजाद नहीं समझना। और बुढ़ापे की गुर्बत बड़ी तकलीफ दे होती है, गुर्बत कभी भी अच्छी नहीं होती। अल्लाह के नबी ने इससे पनाह मांगी कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फ़क्री, मैं फ़कीरी से पनाह मांगता हूँ। लेकिन जो बुढ़ापे में गुर्बत आती है ना, आप देखें उन लोगों की आंखों से पानी ही नहीं जाता, हर लम्हे उनकी आंखें भरी रहती हैं, कतरे गिरते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी जिंदगी भर अच्छी गुजरी हो। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बाज़ बुज़ुर्ग खुद बड़े मेहनती होते हैं, काम करते हैं, खूब असूलों वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं, बड़ी दौलत मिलती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो माल जो है बच्चों के हाथ में आ जाता है, बच्चे उन कुर्सियों पर बैठ जाते हैं कल जहाँ तक बाप था। और अगर औलाद नाफरमान होती है तो वही कुर्सी जो बाप ने उसको ऑफर की होती है, एक वक्त आता है कि उस पर अपने बाप ही को नहीं बैठने देता। ये बदबख्ती की बात है। अब वो गुल छड़े उड़ाने लग गए, उनकी पॉलिसीज बदल गईं, उन्होंने ईमानदारी की बजाय बेईमानी को शार बनाया, बाप की आंखों के सामने माल उजड़ जाता है, कुछ भी नहीं रहता। और फिर उसके बाद इंसान हसरत करता है कि मैंने अपनी माल को ज़ाया क्यों किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए एक दुआ मांगी थी जिसमें ये कहा था कि अल्लाहुम्मा जल अवसा रिस्की, ए अल्लाह मेरे रिस्क को वसी कर देना, इन द किबरा सिन्नी, यानी ये दुआ का खुलासा है। और आप इसको मांग सकते हैं कि अल्लाह मेरा जब बुढ़ापा शुरू हो तो उसमें मेरा माल वसी कर दे, क्योंकि उसमें वैसे भी अल्लाह के रास्ते में देने को इंसान का दिल ज़्यादा चाहता है, और माल ज़्यादा होता है तो दूसरे का डिपेंडेंट नहीं होता। और इस तरह बाज़ दफ़ा देखा गया है कि जितना इंसान के पास माल ज़्यादा होता है तो उतने औलाद और घर वाले भी ज़्यादा ही खिदमत गुजार होते हैं। हम ये नहीं कहते कि माल पाने की नीयत से करते हैं, लेकिन एक फितरी सी बात है कि उसका रोब दिल में आता है। तो पूरे सबक का खुलासा जो है वो हमारे सामने यही है कि अल्लाह के रास्ते में दो तो दिल खोल के दो, कम हो जाने का डर ना रखो। फी सबीलिल्लाह है तो माल को देने के बाद अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक भी जुड़े। ये नहीं कि माल देने में तो खूब आगे हो लेकिन अल्लाह की बाकी बातें मानने में तुम बिल्कुल पीछे होगे, और जितना अच्छे दिल से देंगे उतना ही फायदा होगा। जिसने रियाकारी और दिखावे के लिए दिया उसको वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। हम अपनी ज़िंदगी में अगर गौर करें तो हमारे माल खर्च करने की जगह जो होती हैं अमूमन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं उन जगहों से जिनके ऊपर खर्च करने का अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है। अगले लेसन में इंशाल्लाह इस पे मज़ीद बात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल वाला बना दे। एक दो रिवायतें हैं जो आप सिर्फ उनका हवाला नोट कर लें। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जब बंदे सुबह करते हैं तो दो फरिश्ते आसमान से नाजिल ना हों और वो ये दुआ ना करें, क्या? इनमें से एक कहता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन, ए अल्लाह माल खर्च करने वाले को और ज़्यादा दे, और दूसरा कहता है कि अल्लाह जिसने माल को रोका उसके माल को तलफ कर दे, यानी जो जोड़ जोड़ के रखता है तो उसके माल को तबाह कर दे। तो अल्लाह ताला ना करे कि हम फरिश्तों की बददुआ लें। आपने देखे कुछ लोगों का हाथ खुला होता है, खुले दिल से खर्च करते हैं, उनका भी गुजारा हो जाता है, और कुछ बहुत सेंध सेंध के खर्च करते हैं, कंजूस होते हैं, सोच सोच के देते हैं, ख़ास तौर पे जब किसी दूसरे के ऊपर लगाना हो तो उनको फिर उतना ही मिलता है। इस हदीस से क्या पता चलता है कि हर दिन सुबह उठ के अल्लाह ताला रिस्क बांटते हैं, घर घर में फरिश्ता जाता है और दुआ करके आता है कि अल्लाह इस बंदे का दिल खुला है। और हकीकत में आप देखें कि कुछ लोग बहुत वेल ऑफ नहीं होते लेकिन उनका हाथ थोड़े पे रुकता ही नहीं, वो पहले खूब बड़ा सा पतीला बना के पका लेंगे फिर चार घरों में बांटेंगे, तुम भी ले लो ले लो, उनकी आदत है, उनको कम देने नहीं। यानी हम अपने इर्द गिर्द वालों में देखते हैं कि इवन उनके हालात तंग भी होते हैं ना लेकिन खाने पीने पे कम नहीं खर्च करते, लेकिन कुछ खर्च पानी सोर्स ऑफ इनकम ना होने के बावजूद भी उनकी रोजी रोटी चल ही रही होती है। और कुछ होते हैं वो गिन गिन के पका रहे होते हैं, चार लोग हैं तो उन्होंने चार का पकाया, अब एक मेहमान आ गया तो दिल घुटने लगा, ये भी पसंदीदा बात नहीं है। तो उनको आप देखेंगे ना तो उनके पास बस उतना ही रहता है, ज़ाया ना करें इंसान, लेकिन दस्तरखान खुला हो, जिसमें नौकर भी खुल के खाएं, मुलाजिम भी खाएं, कोई हमसाए में भूखा है तो उसको भी दे दें, कोई घर में आ जाए तो उसके लिए भी खाना निकल आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाना जो दो लोगों के लिए होता है वो तीन को काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए ये असल में इस फरिश्ते की दुआ का नतीजा है। इसी तरह एक और रिवायत सही मुस्लिम की है, आपने फरमाया कि बंदा कहता है कि मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसके माल में से वही है उसका जो उसने खा लिया और हजम होके जिस्म से निकल गया, और पहन लिया और पुराना कर दिया, और वो माल जो उसने अल्लाह के रास्ते में दिया और आखरत के लिए जखीरा कर लिया, इसके अलावा सब कुछ छोड़ कर चला जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है। आप सोचें ज़रा, हम जो माल जमा करके रखते हैं ना, असल में ये दूसरों का माल है जो कल विरसे की सूरत में ढल जाएगा। अपने हाथ से दे देंगे तो आखरत की तिजोरियों में जाएगा। कुछ लोग ना खुद अच्छा खाते हैं, ना अच्छा पहनते हैं, और ना अल्लाह के लिए देते हैं, उनको बस जमा करने का शौक होता है, गिन रहे होते हैं। अब 9 से 99 हो गए, 99 से 100 हो गए, 100 से फिर 1000 हुए, 1000 से, और ऐसे लोगों के माल को बाद में दूसरे ही लेते हैं और वो हिसाब दे रहे होते हैं, और ये विरसे पे लड़ रहे होते हैं पीछे लोग। कितनी हैरत की बात है ना। तो बैलेंस रवैया होना चाहिए। इसी तरह एक रिवायत तिर्मिज़ी में आती है, अब्दुल्ला बिन शुहैर हैं, नबी सल्लम के पास गए और ये सूरत पढ़ रहे थे कि अल्हाकुम अत्तकासुर। तो आपने फरमाया कि इब्ने आदम कहता है कि ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, हालांकि तेरा माल सिर्फ वही है जो तूने सदका किया और जारी कर दिया और खा लिया और फना कर दिया और पहन लिया और पुराना कर दिया। तो ज़रूरत है इस बात की कि इंसान अपने आप को हमेशा इस मामले में खुला रखे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ तक तिलावत सुनेंगे।
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
इन्होंने सवाल किया कि कुछ लोग इस नीयत से जमा करते हैं कि उन्होंने हज पे जाना है, और मैं इसको मज़ीद बढ़ा देती हूँ कि कोई और भी नीयत हो सकती है, हज पे जाना है, या जैसे आप बाहर के मुल्कों में रहते हैं, आप कई साल से अपने मुल्क में नहीं गए और आपको लगता है कि मुझे जब जाना होगा तो टिकट लेनी मुश्किल होगी, तो आप पैसे जमा करना चाहते हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। किसी भी जायज़ काम के लिए आप जमा करते हैं तो जमा करने में कोई मज़ाक नहीं है। ठीक है, जी, और कोई बात? जी, इनका सवाल है कि जो फौतशुदा वालदैन होते हैं उनके उनके इसाले सवाब के लिए या उनकी तरफ से सदका दिया जा सकता है? बहुत ही पसंदीदा अमल है। एक साहबी ने पूछा आके कि मेरी माँ फौत हो गई और उनके छोड़े हुए माल में से क्या अगर मैं कुछ सदका कर दूँ, ये विरसे के अंदर से ही बांटने से पहले अगर कोई करता है तो क्या इससे उनको फ़ायदा होगा? आपने कहा कि ज़रूर करो, यानी ये बहुत ही अच्छा अमल है। बल्कि हमारी आदत होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ अपने वालदैन की तरफ से हमने डिवोट किया हो। हर माँ किसी को कुछ दे रहे हैं, मतलब किसी को एक फ़िक्स मनी भी दे सकते हैं। बात लोग कोई चीज़ वक्फ कर देते हैं कि इसकी इनकम जो है वो मैं अपने माँ बाप की तरफ से सदका करूँगी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं बल्कि पसंदीदा अमल है। जी, रिश्तेदार को देना दोहरा अजर है। एक हदीस अभी आपको कोट कराऊंगी, उसमें चलेगा। इनका सवाल है कि क्या रिश्तेदारों को ज़कात या सदके के पैसे दिए जा सकते हैं? बेहतरीन अमल है, उनमें से ज़कात के मुस्तहकीन को ज़कात दी जाएगी और जो उसके मुस्तहकीन नहीं है तो उनको सदका दिया जाएगा। रिश्तेदारी का भी अजर मिलेगा और सदके का भी मिलेगा। जी, और ये नहीं कि अब सारा मतलब एक ही मद में रखा जाए। अभी इंशाल्लाह अगली आयत पढ़ें, इसमें बहुत सारी बातें हैं। यूतल हिकमा। जी, आप 2 दिन और इंतज़ार कर लें इस सवाल के जवाब के लिए, ठीक है? इनका सवाल था कि जिनके घरों पे लोन है तो वो अपनी किस्तें अदा करें या सदका दें। मैं इस सवाल को और बढ़ा लेती हूँ, बाज़ लोग कहते हैं हज करें या अपना लोन दें। तो 2 दिन रुक जाइए, अगले 2 लेसन के बाद इस पे तफसील से बात हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, रिश्तेदार को किसी भी सूरत में दे सकते हैं। रिश्तेदार को देने में कोई रह नहीं, आपको कहीं से मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है, रेंट के मिल रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह। जी, इनका सवाल यह है कि कोई तोहफ़ा दे और आपको पता हो कि उनका सोर्स ऑफ इनकम दुरुस्त नहीं था, और ख़ास तौर पे माँ बाप जो बेटियों को जहेज़ की सूरत में या जेवर की सूरत में दें, तो अब उसको क्या किया जाए? ये सवाल है ना। देखिए कि आपको तो उन्होंने थोड़ा सा दिया होगा ना, उनके पास बहुत ज़्यादा है। पहली बात है कि अपने ऐसे तमाम रिश्तेदारों के लिए हमारे दिल में बहुत ज़्यादा तड़प होनी चाहिए कि वो ख़ुद इस चीज़ से बच जाएं। आपके पास तो उसकी एक छोटी सी शाख है ना, उनके पास तो पूरा दरख्त है। तो सबसे पहले तो उनकी इस्लाह की कोशिश की जाए, फिर उसके बाद बहुत सारे मसाइल हैं जो इंशाल्लाह आपको हिकमत के साथ सीखेंगे। अगला लेसन सुन लें, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको काफ़ी रहनुमाई मिलेगी कि माल खर्च करने की जो हिकमत है वो भी अल्लाह ताला ने सिखाई है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।